सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्ति द्वीप प्रकरण में उस ज्ञानी के विषय में विचार कर रहे थे कि उस ज्ञानी के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए क्या नहीं। पूर्व पक्षी एक प्रश्न कर रहा है और सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं। उस ज्ञानी के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि जो व्यवहार है वो नहीं बनते हैं। कैसे नहीं बनते हैं बड़े सुंदर ढंग से बताया। श्रवण इसलिए नहीं बनता है कि क्योंकि उनको आत्म विषयक बोध है। जिस आत्मा का श्रवण किसके लिए किया जाता है? बोध के लिए किया जाता है। किंतु उस आत्मा का बोध होने के कारण अब श्रवण बनता नहीं है। उस आत्मा का मनन भी नहीं बनता है। क्यों? जिस आत्मा के विषय में जो श्रवण किया है, जाना है, उसमें किसी भी प्रकार का उनको संशय नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसके विषय में आपने जो सुना है, यदि उसके विषय में आपको संशय है तो उसका अवश्य मनन करना चाहिए। किंतु ज्ञानी के लिए अपनी स्वरूपभूत आत्मा के विषय में श्रवण करने के बाद उनको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है, इसलिए उनको मनन की भी कोई आवश्यकता रहती नहीं है। फिर पूर्व पक्ष कहता है उनके लिए तो निधिध्यासन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपरीत जो भावना है उसको हटाने के लिए। सिद्धांति कहता है कि वो भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ज्ञानी को कभी अपने स्वरूप में अन्य किसी की भावना होती ही नहीं है। अर्थात अपने स्वरूप में अन्य किसी का क्या है, वो दर्शन किसी का करता ही नहीं है। अर्थात अपने स्वरूप को अन्य के स्वरूप को अपना स्वरूप मानता नहीं है। अपने स्वरूप में अन्य किसी के स्वरूप को आरोप करके उसको अपना स्वरूप वो मानता नहीं है। अर्थात उसको अपने ही स्वरूप में इतर का क्या है, भान नहीं होता है। जैसे शरीर है तो मैं तो आत्मा हूं, ये ज्ञानी का अपना क्या है, निश्चय है। उनको मैं शरीर हूं ये विपरीत भावना होती नहीं है। जिसको विपरीत भावना हो जाए उसको निधिध्यासन करना चाहिए। किंतु ज्ञानी को विपरीत भावना होती ही नहीं है, इसलिए उनको क्या है, निधिध्यासन की भी क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहेंगे कि ज्ञानी तो व्यवहार करता ही है, मैं मनुष्य हूं इत्यादि। तो कहते वो व्यवहार कोई बाधक नहीं है, वो व्यवहार कोई बाधक नहीं है, वो संस्कार वश से क्या है, हो रहा है। बिना विपरीत भावना से भी क्या है, व्यवहार होता है। क्यों? संस्कार वश से। क्योंकि जिस अपने स्वरूप के लिए जो आज तक उसने अपने प्रयत्न से क्या है कि मैं आत्मा हूं, इस निर्णय को पक्का करने के लिए, निर्णय पक्का करने के लिए जो अभ्यास किया था, वो अभ्यास करते करते मैं आत्मा हूं ये पूर्ण रूप में क्या है, बोध हो गया। किंतु जो प्रारब्ध का एक संस्कार है, प्रारब्ध में जो पड़े हुए संस्कार, क्योंकि ये शरीर है, ये शरीर को लेकर के जो भी व्यवहार आने वाले हैं, जो जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, ऐसे कुछ व्यवहार है जो व्यवहार क्या है, मैं मनुष्य हूं, ये व्यवहार है, ये प्रारब्ध का ही देन है। मुझे भूख लग गई, मुझे खाना खिलाओ। जबकि ज्ञानी का मतलब आत्मा को तो भूख प्यास लगती नहीं है, और उस ज्ञानी ने तो अपना जान लिया है, निर्णय कर लिया है, निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर उसको कहना नहीं चाहिए। किंतु जिस शरीर के आधार से उसने मैं आत्मा हूं ये जान लिया, उसी शरीर में है वो अभी ज्ञानी। तो जिस शरीर में है उस शरीर का अपना एक संस्कार है, अंतकरण का, स्थूल शरीर का एक अपना संस्कार है। तो उसके साथ है वो वर्तमान में, साथ होने के का उससे कोई उसका संबंध नहीं है कि तो अभी क्या हुआ, उसमें विद्यमान है। विद्यमान होने के कारण क्या है, उस शरीर में रहने के बाद वो संस्कार क्या करते हैं, उस तरह से बुलवाते हैं, मैं मनुष्य हूं, मुझे भूख लग गई, मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है। ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार कोई बाधक नहीं है। अरे कोई शर्मा जी पुलिस बन गए, तो पुलिस बन गए तो अपना जो स्वरूप है उसका, अपना शर्मा, उस शर्मा में कोई बिगाड़ होता है क्या, मैं पुलिस कहने पर? नहीं, शर्मा जी कहते बाहर गए ऑफिस में तो क्या, हाँ मैं किसी ने पूछा पुलिस कौन है, भाई मैं यहां का इंचार्ज हूं, मैं पुलिस हूं। तो ये मैं पुलिस हूं इतना कहने मात्र से अपना ये जो शर्मा रूप है वो बदलता नहीं है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो व्यवहार बाधक नहीं है, वो संस्कार वश कहते हैं। अथवा रिटायर हो गए, क्या है तब भी क्या लोग करे, पुलिस साहब, अब जब पुलिस है ही नहीं है तब भी उसको पुलिस कह रहे हैं, तो वो पुलिस कहने अथवा वो भी कह रहा हाँ मैं पुलिस था, बताइए, उसने कहा पुलिस ही, पुलिस साहब, तो कहते हाँ बोलिए क्या है। ये सुनने से और सामने वाले ने व्यवहार करने से और वो स्वयं मानने से अपने शर्मा का बाध होता नहीं होता है। इसलिए विपर्यास नहीं होने पर भी क्या है, सामान्य व्यवहार होता है, और वो सामान्य व्यवहार बिना विपर्यास से भी क्या है, होता है, वहां कोई विपरीत भावना नहीं है, तो चल रहा है संस्कार वैसे। ये कहते हुए फिर कहते हैं कि ये जो व्यवहार होता है उसके लिए निवृत्ति के लिए ध्यान आदि करना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, ध्यान आदि नहीं कर सकते। क्यों? ये तो प्रारब्ध क्षय पर्यंत वो रहेगा व्यवहार, उसको आप उसके क्षीण करने के लिए आप ध्यान आदि नहीं कर सकते, ये व्यवहार होता रहेगा। अब मैं मनुष्य हूं, मुझे भूख लग गई है, अभी व्यवहार बंद करने से चलेगा क्या? न बोले मुझे भूख लग गई तो ये भूख लग गई ये व्यवहार बंद करने के लिए मैं ध्यान करता हूं, और जिस समय में अब ध्यान करने लगेगा भूख लग गई शरीर को, हाँ क्या करेगा वो? अरे उस मुझे भूख लग गई तभी तो देगा कोई खाने के लिए, अब कहेंगे नहीं भूख लग गई मुझे, नहीं मुझे भूख लग गई कहेंगे नहीं तो आपके सामने थाली कैसे आएगी? हाँ वो तो कहना ही पड़ेगा भूख लग गई, तो ये भूख लग गई इतना कहने मात्र से अपने स्वरूप में कोई बदलाव, अपने निर्णय में कोई बदलाव होता नहीं है, वो तो प्रारब्ध है वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको वो जो मुझे भूख लग गई ये प्रारब्ध है, ये जो कहना है ना ये तो प्रारब्ध है, मैं मनुष्य हूं मुझे भूख लग गई मुझे प्यास लग गई, ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध में आने वाला व्यवहार वो प्रारब्ध को समाप्त करते ही समाप्त होगा, ध्यान आदि से नहीं होगा। तो इसके लिए उन्होंने कह दिया कि इसको कम किया जाए, क्या इसको कम किया जाए, तो कहते हैं 64वें श्लोक में वो उसका उत्तर दे करके फिर उन्होंने और एक संशय किया। उन्होंने विरलत्वम व्यवहारते रिष्टम चेत ध्यानम अस्तुते अबाधिकाम व्यवहारितिम पश्यन ध्यानाम्ये अहम कुतः। उन्होंने ये कह दिया कि जो विरलत्व के लिए व्यवहार के विरल के लिए क्या है जो ध्यानादि है वो करना चाहिए। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने व्यवहार को विरल करने के लिए मतलब कम करने के लिए आप करिए। अबाधिकाम व्यवहारतिम, किंतु मुझे तो अपने स्वरूप में व्यवहार करने पर कोई बदलाव अथवा मेरे अपने स्वरूप की निर्णय में कुछ व्यवहार करने से कोई बाधा ही नहीं है, तो वो व्यवहार बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे स्वरूप का व्यवहार करने से बाध होता तो मुझे व्यवहार क्या है कम करना चाहिए, किंतु मुझे निर्णय है कि मेरे अपने स्वरूप में जो मेरा निर्णय है अपने स्वरूप के विषय में उस निर्णय में उस निश्चय में क्या है व्यवहार करने से कोई बाधा आती नहीं है, इसलिए मुझे उस व्यवहार को कम करने के लिए ध्यानादि करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह दिया। तो आगे कहता है प्रश्न यहां पर, ध्यानस्य अकर्तव्यत्वेपि विक्षेप परिहाराय समाधि कर्तव्य। चलिए ध्यानादि कोई कर्तव्य नहीं बनता है, किंतु विक्षेप का परिहार करने के लिए समाधि करनी चाहिए। तो विक्षेप क्या है, विक्षेप का मतलब क्या है, दूसरे रूप में आ जाना, दूसरे रूप में प्रतीति होना। अभी मेरा स्वरूप शास्त्र ने क्या कह दिया, प्यास से रहित है, भूख से रहित है, क्षुधा प्यास से रहित है मेरा स्वरूप, न मुझे प्यास लगती है न मुझे क्षुधा लगती है, आत्मा का स्वरूप है। तो मैंने अपनी आत्मा के स्वरूप में ये निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं जो आत्मा मुझे न प्यास लगती न मुझे भूख लगती है, ये निर्णय कर लिया। अब ये करने के बाद ये कहता है कि ध्यानादि तो नहीं बनते, चलिए कोई बात नहीं, किंतु ये जो विपरीत भावना हुई ना, अब मुझे प्यास लग गई, ये विपरीत भावना है कि नहीं, जबकि मेरा स्वरूप क्या है प्यास न लगना, मेरा स्वरूप क्या है भूख न लगना, किंतु क्या कह दिया मुझे भूख लग गई, ये विपरीत हुआ क्या नहीं। शास्त्र के द्वारा एक तो निर्णय कर लिया आपने कि मैं इन सभी से अलग हूं, तत्पर भी क्या कह दिया मुझे भूख लग गई, अब ये विपरीत हुआ क्या नहीं। निर्णय कर लिया कि मैं भूख प्यास से रहित हूं और फिर दोबारा कर मुझे भूख लग गई, अब ये विपरीत हुआ क्या नहीं, विपरीत हो गया। तो इस विपरीत के लिए यही क्या है विक्षेप है, इसको क्या कहेंगे विक्षेप, क्योंकि जैसा है वैसा न देख करके उल्टा देखना। अब मैं कैसा हूं भूख प्यास से रहित हूं और आप क्या कह रहा है वो मुझे भूख लग गई, मतलब क्या हो गया विक्षेप हो गया, मतलब अलग रूप में चला गया, अलग ट्रैक पर चला गया। तो कहता है ये ध्यान भले ही न करे, किंतु ध्यान उसके लिए जरूर नहीं है, कर्तव्य नहीं है, किंतु विक्षेप परिहार के लिए तो समाधि करनी चाहिए। तो कहता है इति आशंके, ये शंका, अभी भूख लगना ये क्या हो गया विक्षेप हो गया, मानी विपरीत में आप आ गए, उल्टी भावना हो गई आपकी, उल्टा अनुभव हो रहा है आपको, तो ये शंका, इसके लिए आपको क्या है समाधि लगानी चाहिए। तो उसका उत्तर देते हैं, विक्षेप समाधान यो हो मनोधर्मत्वात् न विक्षेप निवारकेपि समाधौ मम अधिकार इति। अरे भाई ये जो विक्षेप और समाधि ये धर्म किसके है, मन के धर्म है। तो मन कह रहा है क्या है मुझे भूख लग गई, शरीर कह रहा है, ये शरीर का धर्म है भूख प्यास लग गई, तो ये शरीर किसका सहारा लेकर के कह रहा है, मन का सहारा लेकर कहता है। अब ये जो है विक्षिप्त होना मन का धर्म है, और मैं तो उस मन को देखने वाला साक्षी हूं, तो मन कह रहा तो कहनी थी जो मुझे क्या आपत्ति है, जिस मन के द्वारा मैंने अपना निर्णय कर लिया तो मैं तो अलग हो गया, हो गया मेरा काम तो हो गया, अब वो मन जो चाहे करे। हमने अपना काम बना लिया। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा हमने अपना, जैसे मान लो हम टैक्सी में बैठ गए, उसने हमें अपने घर तक पहुंचा दिया। अब पहुंचने के बाद वो टैक्सी कहां जाए, हमें क्या लेना देना है, कहीं भी जाए वो टैक्सी। इसी तरह जिस मन के द्वारा हमने अपने स्वरूप का निर्णय कर लिया, अब वो मन मुझे भूख लग गई ये कह रहा है, चाहे मुझे भूख नहीं लग रही ये कह रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो मन के धर्म है, वो अपना मन करे, मैं तो उस मन को देखने वाला हूं। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं मुझे भूख लग गई, मुझे भूख लग गई ये नहीं कह रहा हूं, ये तो मन कह रहा है, ये शरीर कह रहा है, ये शरीर चाह रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूं, मैं तो उसको देख रहा हूं, वही कह रहा है। विक्षेप समाधान यो हो मनोधर्मत्वात्, ये विक्षेप होना फिर एकाग्र होना, ये सब मन का धर्म है। न विक्षेप निवारक के अपि समाधो मम अधिकार, इसलिए उस विक्षेप का निवारण करने के लिए वो मेरा अधिकार नहीं है। ये किसका अधिकार है, वो मन विक्षिप्त हो गया, मन ही सोचे एकाग्र होने के लिए, मेरा अधिकार नहीं है उस विक्षिप्त हुए मन को, क्या है उसको फिर स्थिर करना, ये मेरा अधिकार में नहीं है, वो दूसरी की वस्तु, वो मन का अधिकार है। मन को, मन यदि विक्षिप्त हो गया तो वो अपने विक्षिप्तता को हटाने के लिए एकाग्र हो जाए, मैं उससे अलग हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है उस मन के विक्षेप होने में। मम अधिकार न इत्यता, इसी बात को लेकर के ये श्लोक आ रहा है। विक्षेपो नास्ति अस्मान में, विक्षेपो नास्ति अस्मान में, न समाधिस्ततो मम, न समाधिस्ततो मम, विक्षेपो वा समाधिर्वा, विक्षेपो वा समाधिर्वा, मनसः स्याद् विकारिणः, मनसः स्याद् विकारिणः। कहते हैं विक्षेपो नास्ति यस्मान में, कहते हैं विक्षेप तो मेरा स्वरूप है ही नहीं है, विक्षेप मेरा धर्म नहीं है, वो किसका धर्म है, मन का धर्म है। इसलिए क्या है, और दूसरा न समाधिस्ततम, समाधि भी मेरा धर्म नहीं है, वो धर्म किसका है, अंतकरण का है, मन का है। इसलिए कहते विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्यात् विकारिणा, ये विक्षेप और समाधि, चाहे विक्षेप हो चाहे समाधि हो, वो किसका विकार है, मन का विकार है। तो उस मन के विकार को किसको संभालना चाहिए, मन को ही संभालना चाहिए, जो जिसका विकार है उस विकार के बारे में वही सोचे, वो तो मेरा है ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको, उसके निवारण के लिए मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। हाजी हाँ, कई प्रकार के, उनको शॉर्टकट में इतना ही समझाना, विक्षेप कौन होता है, मन होता है, तो ये मन का धर्म है, वो मन संभाले उसके बारे में, उसकी चिंता वो मन करे, वो एकाग्र करना है तो वो मन अपना सोचे एकाग्र होने का, मेरा तो धर्म है ही नहीं ना, मैं तो व्यापक हूं, मैं तो मेरा अपना निश्चय हो चुका है, ये सब जितने भी धर्म है वो मन के धर्म है, तो मन सोचे उसके बारे में, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, उस मन को एकाग्र करने का अधिकार वो मन का ही है, मेरा नहीं है। मन विक्षिप्त हो गया तो वो मन को ही सोचना पड़ेगा कि मुझे एकाग्र होना चाहिए, उसको जहां अच्छा लगे वहां जाए, मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूं। विक्षेप यदि, उन्होंने यहां टीका उन्होंने नहीं की, वो सरल अर्थ था इसलिए उन्होंने किया नहीं। आगे कहते हैं ननु तथापि समाधि फल अनुभव संपादनीय, चलो भाई हम समाधि में नहीं मानते, पर समाधि का फल जो अनुभव है, ज्ञानी ने क्या है उसी मन के सहारे क्या की थी, समाधि लगाई थी, और समाधि लगाई थी तो किस में समाधि लगाई थी, अपने ही स्वरूप में, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर हो गया था, तो अपने स्वरूप में स्थिर हो गया तो वहां आखिर किया क्या, वो क्या देखा, वो उस समाधि के द्वारा मैं अनुभव रूप हूं, ये उन्होंने देखा। मैं किसी का अनुभव नहीं हूं, क्या है, मैं किसी का अनुभव नहीं। जैसे मन हमारा अपने अनुभव का विषय है, किंतु मैं जो अनुभव रूप हूं मैं किसी के अनुभव का विषय नहीं हूं। जैसे ये माइक है तो इसका अनुभव कर रहे ना, तो हमारे अनुभव का विषय बन गया, किंतु मैं जो अनुभव रूप हूं मैं किसी का भी क्या है विषय नहीं हूं। तो मैं जो अनुभव रूप हूं तो वो समाधि के द्वारा क्या है वो? देख लिया कि हाँ मैं अनुभव रूप हूं। तो कहते जो समाधि का फल जो अनुभव है उस अनुभव को दोबारा संपादन करने के लिए क्या करना चाहिए, जो है समाधि का जो फल के अनुभव के लिए समाधि लगानी चाहिए, क्या है समाधि का जो फल अनुभव रूप उसके लिए वो करना चाहिए समाधि। तो कहते हैं ये भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? तस्य मत स्वरूपत्वात् न संपाद्यता, अर्थात वो जो अनुभव है वो मेरा ही अपना स्वरूप है, उसके लिए समाधि बनती नहीं है। साधन उसका करना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है जो अपनी वस्तु नहीं है, उसके लिए क्या है साधन करना पड़ता है। अब अनुभव ये तो मेरा ही अपना स्वरूप है तो उसके लिए क्या साधन करेंगे, साधन करने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने पास नहीं है, अपना नहीं है, उसके लिए साधन करें। ये तो अनुभव तो मेरा ही अपना स्वरूप है ना, जब मेरा ही अपना स्वरूप है उसके लिए क्या साधन करेंगे, साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात समाधि की आवश्यकता नहीं है। समाधि तो इसलिए थी कि जो मेरा अपना स्वरूप जो विस्मृत हुआ था वो स्मरण दिलाने के लिए था, अर्थात हम अपने स्वरूप में स्थिर नहीं थे इसलिए समाधि थी। अब हम अपना स्वरूप जो अनुभव है उस अनुभव में तो क्या है स्थिर हो गए, अब हटने की कोई संभावना नहीं है। अनुभव तो मेरा अपना स्वरूप है, अब उसको समाधि करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात समाधि के द्वारा उसको अपने अनुभव स्वरूप को क्या है अनुभव करने की जरूरत नहीं है। अनुभव का अनुभव होता नहीं है, अनुभव अनुभव होता है, वो मेरा स्वरूप है, इसलिए उसके लिए समाधि की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं नित्यानुभवरूपस्य नित्यानुभवरूपस्य कोमेवानुभव पृथक् कोमेवानुभव पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयम् कृतं कृत्यं प्रापणीयम् प्राप्तमित्येव निश्चयः प्राप्तमित्येव निश्चयः। कहते नित्य अनुभव रूपस्य कोमे वा अनुभव पृथक्, मैं तो नित्य अनुभव रूप हूं ये मैंने जाना है, इसलिए क्या है अनुभव रूप मैं नित्य अनुभव रूप होने के कारण मेरे अनुभव के लिए और कोई अनुभव बनता नहीं है। अब मान लीजिए यदा कदी कदाचित मैं अनुभव रूप हूं इसका अनुभव के लिए दूसरा अनुभव यदि बने तो क्या दिक्कत है, मैं अनुभव हूं इसका अनुभव करने के लिए दूसरा यदि अनुभव यदि लगता है उसकी आवश्यकता होती है तो क्या समस्या आएगी, अनवस्था दोष आएगा। मैं अनुभव हूं इस अनुभव करने के लिए दूसरा अनुभव, अब उस अनुभव को फिर अनुभव करना है, अब वो अनुभव है क्या नहीं उसका भी तो अनुभव करना पड़ेगा, फिर तीसरा अनुभव करो, हाँ ये अनुभव अनुभव है तो यह अनवस्था दोष आएगा ना। तो अनुभव अनुभव होता है, अनुभव के लिए दूसरा अनुभव होता नहीं है। यदि अनुभव के लिए भी अनुभव मानते हैं तो अनवस्था है, और अनवस्था में फिर वो स्थिरता नहीं है, वो बनता जाएगा, प्रश्न बनता जाएगा, उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, प्रश्न बनता जाएगा उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न का मतलब क्या, संशय, ये अनुभव किससे हुआ, ये प्रश्न पड़ा, ये प्रश्न हो रहा है, वो कहेंगे वो दूसरे अनुभव से, दूसरा अनुभव किससे हुआ तो तीसरे अनुभव से, तो ये तो प्रश्न तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जब प्रश्न ही खत्म नहीं होगा तो आपकी जो है आत्मस्थिति कहां रहेगी। प्रश्न बनने का मतलब आप अपने स्वरूप से हट गए, जहां प्रश्न ही समाप्त हो गया, समझ लीजिए आप अपने स्वरूप में स्थित है। जहां प्रश्न समाप्त है वही आपका वास्तविक क्या है, ज्ञान है, वही आपका मोक्ष है, वही आपकी जीवन मुक्ति है। प्रश्न समाप्त नहीं है तो समझ लेना जीवन मुक्ति अभी भी नहीं है। नित्यानुभव रूपस्य कुमेवा अनुभव पृथक, जो मैं नित्य अनुभव रूप उस अनुभव का अन्य क्या है अनुभव करने के लिए दूसरा अनुभव कहां से हो सकता, अर्थात नहीं हो सकता। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इत्येव निश्चय, ये जो आरंभ हुआ था जो कृतकृत्यता कहां आरंभ हुआ था हम लोगों का, कि बावन श्लोक में भी हुआ था, ये शुरुआत हुई थी ना, उससे भी पहले शुरुआत होती, परंतु यहां पर जो कृतकृत्यता बताई थी बावन में कि मैं अब कृतकृत्य हो गया हूं, और जो प्रापणीय और प्राप्त है वो भी क्या है हो गया है, जो प्राप्त करने योग्य उसको प्राप्त कर लिया, और जो करने योग्य था वो कर लिया, यहां से आरंभ हुआ था, शंका आरंभ हुई थी, तो अब यहां पर वो समाप्त हो गया कि क्या है, उस ज्ञानी के लिए ये सब कुछ भी बनता नहीं है, क्योंकि वहां कृतकृत्य बता करके वहां पर शंका शुरुआत की थी, और उस शंकाओं का समाधान देते देते यहां तक क्या उन्होंने सिद्ध किया कि उस ज्ञानी के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं बनता है, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता नहीं है, किसी के संग क्या है आरोप करने से उसमें कोई बदलाव आता नहीं है, अनेक प्रकार के क्या है दृष्टांत दे करके समझाया। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इतिव निश्चय, उस ज्ञानी का क्या निश्चय हुआ है, जो करने योग्य था वो कर लिया, ये निश्चय है, जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया है, ये निश्चय है। तो करने योग्य क्या था उस ज्ञानी के लिए, आत्मज्ञान, अपने स्वरूप में स्थिति, ये करने योग्य थी वो हो चुकी है, प्राप्त करने योग्य था वो आत्मा ही था, वो क्या है उन्होंने प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त हो गया उनको, सब कुछ हो गया, अब इस ज्ञानी के लिए कोई भी बात व्यवहारिक बनती नहीं है, चाहे आध्यात्मिक साधना हो चाहे सांसारिक जो है व्यवहार हो, वो दोनों बनते नहीं है। आगे कहते हैं एवं सर्वत्र कर्तृत्व अनभ्युपगमे अनियत वृत्तिम प्रसज्जेत, फिर शंका की इन्होंने। अब ये तब तो चलो ज्ञानी के लिए कुछ बनता ही नहीं है, कोई व्यवहार ही नहीं बनता है, अब वो करता रहा ही नहीं, अकर्ता हो गया, अभोक्ता हो गया, जब कर्तृत्व का यदि उसमें क्या है स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका व्यवहार तो अनियत ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनियत होने लगेगा। कर्तृत्व अनभ्युपगमे, उसमें कर्तृत्व यदि भाव नहीं है तो उसका व्यवहार अनियत हो जाएगा। अनियत का मतलब क्या है, उल्टा सीधा व्यवहार होने लगेगा, क्योंकि उन्होंने ज्ञानी ने निर्णय किया मैं आत्मा हूं, इस शरीर से मन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो कर्तृत्व में ये तो होना, अब हम लोग जैसे मानते हैं ना कि हम कैसे सत्संगी है, हम सत्संग श्रवण करते हैं, तो सत्संग श्रवण करने का कर्तापन हमारे में है ना, तो ये कर्तापन हमें क्या कर रहा है, नियत रूप से सत्संग में ला रहा है। ये मैं सत्संगी हूं, मैं साधक हूं, ये इसका कर्तापन ये भाव यदि नहीं होता तो हम नियत आते क्या यहां पर? नहीं आते। जिसके भीतर कोई भाव ही नहीं है तो उसके द्वारा तो कोई भी किसी भी समय कुछ भी व्यवहार होने लगेगा। तो कुछ भी व्यवहार होना ये कोई उचित तो बात तो नहीं ना, किसी समय भी कुछ भी व्यवहार हो जाए ऐसा तो ठीक नहीं है। अनियत हो गया, अनियत ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोक व्यवहार में तो यही तो है ना, यदि वो किसी को पकड़ के चलता है तो वो बराबर चलता है, यदि पकड़ेगा नहीं तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, तो वो तो वो उचित बात नहीं ना। तो ये लौकिक व्यवहार में नियत व्यवहार न हो तो ये सबके लिए क्या है? समस्या का कारण बन जाता है। खुद के लिए भी क्या? समस्या का कारण बन जाता है। अब जैसे आपने ज्ञानी को मान लिया तो कर्तृत्व तो भाव ही नहीं उसमें, जब कर्तृत्व तो भाव ही नहीं है तो इसका व्यवहार अनियत हो जाएगा, उत्सृंखल हो जाएगा। वो तो प्रसज्जित इति ये शंका है। तो कहते प्रारब्धवशात प्राप्तम अनियत वृत्तित्व अंगीकरोति। ये कहता है ज्ञानी के लिए प्रारब्ध में जो अनियत व्यवहार प्राप्त है उसको हम स्वीकार करते हैं, हो जाएगा उसके द्वारा अनियत व्यवहार। क्या है? ज्ञानियों के द्वारा अनियत व्यवहार हो जाएगा, हम उसको स्वीकार करते हैं। उस अनियत व्यवहार से क्या है, उस ज्ञानी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क किनको पड़ेगा? अज्ञानियों के लिए फर्क पड़ेगा। टीचर जो है प्रार्थना होने के बाद आ जाए चाहे पहले आ जाए कोई फर्क, पर विद्यार्थी के लिए उसको तो प्रार्थना के समय आना ही पड़ेगा। नहीं आएगा तो उसको सजा मिलेगी। क्यों? अभी वो विद्यार्थी ज्ञानी नहीं है, इसलिए उसको व्यवहार संभालना पड़ेगा। कि तो टीचर को व्यवहार थोड़ा संभालना है, उस स्कूल का जो गणवेश है उस वेश को धारण करे चाहे न करे टीचर को क्या फर्क पड़ना है? कि तो विद्यार्थी को फर्क तो पड़ना है। तो यहां कह रहे वो व्यवहार अनियत व्यवहार उस ज्ञानी के लिए क्या है, प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित किसको करेगा? अज्ञानियों के लिए करेगा। प्रारब्ध वशात जो प्रारब्ध में जो अनियत व्यवहार है वो अनियत व्यवहार क्या है, होने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम अंगीकार करते हैं, हो जाता है उसके द्वारा। व्यवहारो लौकिको वा व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममा कर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम् यथारब्धं प्रवर्तताम् व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथा वा। कहता है चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे शास्त्रीय व्यवहार हो, चाहे व्यवहारिक और शास्त्रीय से बहिर्भूत कोई व्यवहार हो जो कि लोक व्यवहार जिसको नहीं मानता है उस व्यवहार को, चाहे वो व्यवहार हो, वो सब के सब व्यवहार। मम अकर्तुः अलेपस्य यथा प्रारब्धं प्रवर्तताम्। मैं जो अकर्तु मुझ अकर्तु में उन व्यवहारों का कोई लेप नहीं हो सकता। मम अकर्तु मैं तो अकर्तु हूं, अर्थात मैं जब अकर्तु हूं तो अर्थात उससे अलेपायमान हो, लेपायमान नहीं हूं। जब लेपायमान नहीं हूं तो वो व्यवहार कोई दिक्कत करेगा? नहीं करेगा। यथारब्धम प्रवर्तताम जैसे प्रारब्ध है प्रवर्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अनियत व्यवहार होने दीजिए, कोई बात नहीं है। लौकिको भिक्षाहारादि शास्त्रीय जप समाध्यादि अन्यथापि वा प्रतिषिद्ध हिंसादिर्वा व्यवहारः कर्तृत्व भोक्तृत्व रहितस्य मम प्रारब्धम् कर्म अनतिक्रम्य प्रवर्तताम्। मैं जो है यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं कि जो लौकिक व्यवहार है कौन सा, भिक्षाटन आदि, ज्ञानी भिक्षा करने लेके जाएगा, शास्त्रीय जप करेगा, जो उसका ज्ञान होने के लिए जिसको अपने जीवन में नियम के रूप में उसने क्या है निश्चित किया था, मुझे सुबह 4 बजे उठना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, ओंकार जप करना चाहिए, सब जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये शास्त्रीय जप जप आदि ध्यान आदि, अथवा कहते अन्यथापि, ये दोनों व्यवहार से अलग जो लौकिक व्यवहार लोक के लिए विरुद्ध है कौन सा, हिंसादि, चाहे वो हिंसादि हो व्यवहार, तो प्रतिषिद्ध हिंसादि रूपा व्यवहार, वो व्यवहार होने दीजिए। कर्तृत्व भोक्तृत्व भोक्तृत्व राहित्यस्य, मैं तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित हूं, तो मम प्रारब्धम, जो अब प्रारब्ध है जो भोगने के लिए आया है, तो मान लीजिए प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध ही कहने के लिए बाध्य कर रहा है कि मुझे भूख लग गई, तो वो बोलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रारब्ध ने जो है कह दिया कि तुमको जब करना है, प्रारब्ध में है मान लीजिए, तो वो जब उसके द्वारा होगा, तो कहता है इस व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हिंसा भी, हाँ हिंसा भी, जैसे जो है किसी को मार दिए और उसका हाथ टूट गया सामने वाले का, उसका सामने वाले का हाथ टूटना इनके द्वारा वो था निश्चित, अब वो भोग है नहीं, अब हाँ किसी का मारने के बाद हाथ टूट गया उसके नसीब में जो दुख आ गया वो उसका प्रारब्ध हो गया, वो किसके द्वारा प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, उस ज्ञानी के द्वारा वो प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, वो पाप नहीं हुआ क्योंकि मैं तो अकर्ता हूं ना, मैं किसी का करता ही नहीं, हाँ मैंने इसको मारा ये अभिमान करता तो उसका पाप आ जाता, हाँ इतना जरूर है वो उसको मारा उसको कष्ट हो गया तो वो जो कर्म हुआ उसका पाप तो बनता है कि तो वो पाप उसको नहीं लगता है क्योंकि उस क्रिया का कर्ता अपने को मानता ही नहीं है, किंतु उस कर्म का तो कुछ न कुछ बनेगा ना, अच्छा कर्म किया किसी का जो है मदद की तो वो पुण्य कर्म हो गया, तो वो क्रिया का तो कुछ न कुछ होगा ना इफेक्ट, तो वो फल उसका क्या है, एक का अच्छे कर्म का फल पुण्य उत्पन्न होगा और बुरे कर्म का फल पाप उत्पन्न होगा, किंतु वो दोनों उसको नहीं लगेंगे, फिर किसको लगेंगे, जो उसकी स्तुति करेगा वो पुण्य उसके माथे चला जाएगा और जो उसकी निंदा करेगा पाप उसके माथे जाएगा, क्योंकि वो कैसा है दोनों से भी क्या है वो अपने आप को अलग समझता है, उनका निर्णय पक्का निर्णय, वो तो देखिए दो तरह के दंड है, इस लोक में आप कुछ गलती हुई उसने गलती की, वो जैसे मान लिया किसी ने बलात्कार किया, अब लोक व्यवहार में हो रहा बलात्कार किया, तो बलात्कार किया तो मनुष्य ने क्या किया अपने हिसाब से उसको दंड दे दिया, तो उसका ये उस दंड का ये दृष्ट क्या है भोग है, उसका अदृष्ट जो भोग है दुखात्मक वो बन चुका है उसका ऊपर क्या है, किसी भी क्रिया का दो फल है, एक दृष्ट फल है एक अदृष्ट फल है, अदृष्ट फल उसका दुखात्मक अदृष्ट फल कब मिलेगा जब मरेगा, अदृष्ट फल उसको यहां दिया जाएगा, वो कौन देंगे, यहां का राजा देगा, वो शास्त्र है उसके लिए, अब ज्ञानी के लिए भी, तो ज्ञानी के द्वारा मान लीजिए हो गया तो उसको दृष्ट फल तो मिलता ही है, टूट गया हाथ तो चार लोग तो गाली देंगे ना, तो वो भी सोचेगा नारी ये तो हो गया कर्म, चलो हो गया, कुछ प्रारब्ध था मेरे द्वारा, इसका होना था, नहीं होना चाहिए था पर हो गया, नहीं होना चाहिए था ये हो गया, इतना भी उसको हुआ क्या नहीं खेद, तो उसका फल तो मिल गया ना, उस कर्म का जो फल है उसको मिल गया, खेद तो हो गया ना, अरे नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं हुआ ये, मेरे जैसे को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो खेद हो गया पश्चाताप होगा वो फल तो मिल गया अदृष्ट, किंतु तो अदृष्ट फल नहीं मिलेगा उसको, क्यों, वो तो कुछ देर के लिए वो भावना बन गई थी, उस भावना ने उसको तत्काल क्या कर दिया, थोड़ा सा खिन्नता में लाया, शरीर में ला करके, किंतु जो अदृष्ट फल है वो फल तो जो उसके निंदा करेंगे वो उसको मिलेगा, ये व्यवस्था है। जैसे कोई गृहस्थ है, अब उसका कोई तो है ही नहीं है, और उसके पास बहुत धन संपत्ति है, अब उसकी सेवा करने वाले को क्या है, उसकी धन संपत्ति मिलती है, अब वो जो धन संपत्ति उसके प्रारब्ध में थी तो उसने कमाई भी नहीं है, उसके प्रारब्ध में थी, मान ली उसके माँ बाप ने बहुत कमा के रख दिया कि तो उसको कोई संतान ही नहीं हुई, और उसको तो प्रारब्ध से मिली वो संपत्ति, जो मिली हुई संपत्ति है उस संपत्ति को अब वो क्या है, वो छोड़ के जाएगा क्या, नहीं ना, जो उसको वृद्धावस्था में सेवा करेगा वो संपत्ति उसके अधीन हो जाएगी। इसी तरह कोई स्तुति करता है सेवा करता है तो उसका पुण्य क्या है, वो ले जाता है, जो निंदा करता है तो वो उसका पाप ले जाता है, लोक व्यवहार में जैसे वैसे यहां पर भी। आगे कहते हैं हाँ निबध्यते, यही है वो गीता में कह दिया ना, न हंति न निबध्यते, वो उससे वो कुछ होता ही नहीं, उसका उससे संबंधित होता ही नहीं, उससे बनता ही नहीं, वो उसका किसी प्रकार से संबंध होता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने स्वरूप में रहता है, उसको कहने की जरूरत नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए अज्ञानी जीव को ये कहना पड़ता है कि तुम्हारा घर है, तुम घर में जाओ, तुम अपने बच्चों को पालन पोषण करो, क्यों नहीं कहना पड़ता है? क्योंकि उसका वो जो ज्ञान है वो इतना पक्का ज्ञान है कि उस ज्ञान की आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे पुत्र है, इनको संभालना चाहिए, मुझे घर में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि उस संबंधित जो ज्ञान है वो पक्का ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए कहने की भी जरूरत नहीं है, न स्वयं को कुछ ज्यादा कोई प्रयास करना होता है, अपने आप चला जाता है। किंतु जब यहां आता है कि यार तुम जो है संसारी नहीं हो, तुम्हारा ये संसार नहीं है, तुम तो आत्मा हो, ये करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए तो अपने ओर से प्रयास करना पड़ता है। जो ज्ञान पक्का होता है उसके लिए प्रयास नहीं होता। इसी तरह ज्ञानी को ये हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर संबंधी मेरे अपने कोई है ही नहीं है, मैं आत्मा, वही निर्णय होने के बाद वो कहीं भी कहीं पर भी कुछ करे कुछ भी करे वो अपने में स्थित है। हाँ यही कह रहे हैं आगे लौकिक। हाँ ये हो गया प्रतिषिद्ध हिंसादि व्यवहार कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रहितस्य मम प्रारब्धम कर्म कर्मान अतिक्रम्य प्रवर्तताम, भले ही मेरे द्वारा अतिक्रमण हो जाए किंतु वो मेरा नहीं है, ये निर्णय रहता है। चलिए आगे के विषय में कल विचार करते हैं। हरिओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।